लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम लोगों के मूल और स्मृति का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के समस्त बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका अनुभव और ज्ञान युवाओं को भविष्य की ओर आशा और जिम्मेदारी के साथ देखने में मदद करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने बुधवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी पर चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी प्रकाशित की। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करती जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवेंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परम धर्माध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। प्रेरिताई कार्य और परिवर्तन के संबंध में हमने अपने पिछले प्रसारण में इस बात का जिक्र किया कि कलिसियाई नवीनीकरण को हम स्थगित नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में हमने पल्ली को समुदायों का एक समुदाय और सदैव प्रेरितिक कार्य की एक पहुंच कहा, एक प्रार्थनामय स्थल जहां प्यासे अपनी यात्रा करते हुए प्यास बुझाने आते हैं। श्रोताओ, कलिसिया की अन्य संस्थाएं, मूलभूत समुदाय और छोटे समुदाय, आंदोलन और संघों के प्रकार कलिसिया को समृद्ध बनाने के स्रोत होते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा विभिन्न स्थानों और परिस्थितियों में सुसमाचार प्रसारित करने को प्रेरित किए जाते हैं। बहुत बार वे सुसमाचार प्रचार के एक नए जोश और दुनिया से वार्ता की नई योग्यता को लाते हैं, जिसके द्वारा कलिसिया नवीन होती है। लेकिन यह उनके लिए लाभप्रद होगा यदि वे स्थानीय कलिसिया की सच्चाइयों से अपने को अलग नहीं करते हों और उस विशेष कलिसिया में प्रेरितिक कार्य हेतु तत्परता से हाथ बटाते हों। इस तरह कलिसिया में उनकी यह सहभागिता उन्हें केवल सुसमाचार या कलिसिया तक ही सीमित नहीं रखेगा या वे बिना जड़ों की भटकते नहीं रहेंगी। हर विशेष कलिसिया कैथोलिक कलिसिया के एक भाग के रूप में, जो अपने धर्माध्यक्ष के नेतृत्व में एक तरह से प्रेरितिक परिवर्तन के लिए बुलाया जाता है। यह सुसमाचार प्रचार की प्रथम विषय वस्तु है, क्योंकि यह किसी एक स्थान की कलिसिया को ठोस रूप में प्रस्तुत करता है और उसमें यीशु ख्रिस्त की एक पवित्र कैथोलिक और प्रेरितिक कलिसिया सचमुच में उपस्थित और क्रियाशील रहती है। यह कलिसिया का किसी खास स्थान पर देह धारण है, जो यीशु ख्रिस्त के मुक्तिदायी वरदानों से सुसज्जित होती है। यीशु ख्रिस्त को प्रसारित करने की इसकी खुशी दोनों ही रूपों में व्यक्त होती है, जहां हम उन्हें उन परिस्थितियों में घोषित करते हैं जहां उनकी अति आवश्यकता है। इसके साथ ही वह अपने को अपने उन स्थानों से बाहर या नए सामाजिक सांस्कृतिक स्थलों की ओर निरंतर ले चलती है, जहां कहीं भी पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त की ज्योति और जीवन की अति आवश्यकता है। यह अपने को उन स्थानों में ले चलने की तमन्ना रखती है। इस प्रेरितिक उत्साह को और अधिक केंद्रित, उदार और फलहित बनाने हेतु संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मैं प्रत्येक विशेष कलीसिया को उनके आत्म परीक्षण, शुद्धिकरण और सुधार की एक दृढ़ प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। संत पापा कहते हैं कि एक धर्माध्यक्ष को चाहिए कि वह प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय के आदर्शों का अनुसरण करते हुए अपने धर्म प्रांत में प्रेरितिक एकता को मजबूत करे, जहां हम विश्वासियों को एक हृदय और एक आत्मा के रूप में पाते हैं। ऐसा करने हेतु उसे चाहिए कि वह अपने लोगों के आगे चले, उस राह को दिखाए और उनकी आशा को जागृत बनाए रखे। वहीं दूसरे समय में उसे चाहिए कि वह अपने लोगों के मध्य विनम्र और दयालु बनकर उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में उसे अपने लोगों के पीछे चलने की जरूरत है, जिससे वह उन लोगों की मदद कर सके जो पीछे छूट जाते हैं। और उन चीजों से भी बढ़कर उसे चाहिए कि वह उन्हें नए मार्गों को खोजने हेतु स्वतंत्र छोड़ दे। एक गतिशील, खुली और प्रेरितिक समुदाय को बढ़ावा देने की अपनी प्रेरिताई में उनमें कलीसिया की कानून संहिता और प्रेरितिक संवाद के अन्य रूपों को प्रोत्साहित और विकसित करना होगा, जिससे वह सबों को सुन सके, न कि केवल उन बातों को जिन्हें वह सुनने की चाह रखता है। यद्यपि इन सहभागी प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य कलीसियाई संगठन नहीं होना चाहिए, बल्कि सबों तक पहुंचने की प्रेरिताई आकांक्षा होनी चाहिए। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, क्योंकि मैं इन सारी बातों का अभ्यास दूसरों को करने हेतु कहता हूं, अतः मुझे भी चाहिए कि मैं भी अपने परम धर्माध्यक्षीय काल में परिवर्तन के बारे में विचार करूं। रोम के धर्माध्यक्ष के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सुझावों के लिए खुला रहूं, जो मुझे अपनी प्रेरिताई को और अधिक निष्ठापूर्ण ढंग से पूरा करने में मदद करेगा, जिसे यीशु ख्रिस्त मुझे देने की चाह रखते हैं, जो वर्तमान समय में सुसमाचार के प्रचार हेतु जरूरी है। संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने कलीसिया के परम धर्माध्यक्ष स्वरूप सुझावों की मांग की, जिससे वे अपनी प्रेरिताई को उचित रूप में कर सकें। वहीं उन्होंने उन बातों का परित्याग नहीं किया जो प्रेरिताई हेतु जरूरी है, यद्यपि यह एक नई परिस्थिति को हमारे लिए खुला रखता है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि इस संबंध में हमने बहुत कम विकास किए हैं। परम धर्माध्यक्ष और वैश्विक कलीसिया के केंद्रीय स्वरूप को भी चाहिए कि वे प्रेरितिक कार्य में परिवर्तन की बातों को सुने। द्वितीय वैटिकन महासभा कहती है, प्राचीन पितृसत्ता कलीसिया के जैसा धर्माध्यक्षीय सम्मेलन अपने में एक तरह से उसी प्रकार है जो कलीसिया को ईश्वर की योजना अनुसार संचालित करने हेतु बहुत से लाभदायक बातों को ठोस रूप में व्यक्त कर सकता है। यद्यपि यह चाहत अपने में पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो पाया है, चूंकि धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की एक न्यायिक स्थिति जो उन्हें वास्तविक सैद्धांतिक अधिकार सहित विशिष्ट गुणों के विषयों के रूप में देखती है, अब तक पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं हो पाई है। अत्यधिक केंद्रीकरण मददगार साबित होने के बजाय कलीसिया के जीवन और उसके प्रेरितिक कार्यों की पहुंच को जटिल बना देता है। एक प्रेरितिक कार्य अपनी प्रेरिताई में असंतुष्ट रवैये को त्यागना चाहता है, जो कहता है, हम सदैव अपने कार्यों को इसी तरह करते आ रहे हैं। संत पापा कहते हैं कि मैं हर विश्वासी को साहसपूर्वक और सृजनात्मक रूप में इसके लक्ष्यों, संरचनाएं, शैली और सुसमाचार प्रचार के तरीकों को अपने समुदाय में पुनर्विचार करने का निमंत्रण देता हूं। लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु लक्ष्यों का प्रस्ताव जो समुदायों द्वारा साधनों की पर्याप्त खोज के बिना सुनिश्चित किया जाता है, अनिवार्य रूप से भ्रामक साबित होता है। मैं सभी को इस दस्तावेज में दिए गए दिशा निर्देशों को बिना किसी हिचकिचाहट या भय से उदारता और साहसपूर्वक लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अकेले नहीं चलना है, बल्कि भाई बहनों की भांति हमें एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत है, और विशेष रूप से धर्माध्यक्ष के नेतृत्व में जो अपने में बुद्धिमता और यथार्थवादी विचारों का आत्म मंथन है। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरे दिल में तेरा प्यार है,
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने कहा है कि सच्ची विश्व शांति एवं स्थिरता के लिए एक वास्तविक संवाद की जरूरत है, ताकि एक परमाणु आतंक के संतुलन से बाहर निकला जा सके। उन्होंने जोर दिया है कि परमाणु हथियारों को रखना और उनका प्रयोग करना अनैतिक है। सोमवार को प्रेषित एक ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने जोर देते हुए कहा कि दुनिया को अपनी शांति एवं स्थिरता हेतु सच्ची वार्ता की ओर आगे बढ़ना चाहिए, न कि परमाणु हथियारों के प्रयोग की ओर, क्योंकि एक आतंक का संतुलन सिर्फ गलत सुरक्षा की भावना प्रदान करता। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों का प्रयोग साथ ही साथ उनको रखना मात्र भी अनैतिक है। संत पापा ने ट्वीट में लिखा, परमाणु हथियारों का प्रयोग साथ ही साथ उन्हें रखना मात्र भी अनैतिक है। स्थिरता एवं शांति को सुरक्षा की एक गलत भावना से बचाने की कोशिश करना और आतंक का संतुलन करना लोगों के बीच संबंध को विषक्त करता और सच्ची वार्ता को नुकसान पहुंचाता है। संत पापा के ट्वीट संदेश में परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि का हवाला दिया गया है, जिसमें न्यूयॉर्क में अगस्त से 5 साल की समीक्षा शुरू की जाएगी। महामारी ने समीक्षा में देरी की है, जिसको पहले ही 2020 में शुरू होना था। अप्रसार संधि में परमाणु ऊर्जा के अप्रसार, निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण उपयोग के 3 स्तंभ शामिल हैं, और इसमें परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साधन के रूप में देखा जाता है। संधि का उद्देश्य अन्य देशों में परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के साथ साथ परमाणु हथियारों के भंडारण में कमी करना है। जून में संत पापा फ्रांसिस ने परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि के लिए राष्ट्रों के विभिन्न दलों की पहली बैठक को एक संदेश दिया था, जिसको पढ़कर प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने युद्ध को समाप्त करने और संघर्ष के कारणों के लिए अपने आह्वान को नवीकृत किया था तथा पुष्टि दी थी कि परमाणु हथियारों का प्रयोग और यहां तक कि उसे रखना भी अनैतिक है। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि के साहसिक दृष्टिकोण को सराहा था और कहा था कि इसकी आवश्यकता इस समय हमेशा से कहीं अधिक है। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि का उद्देश्य है परमाणु हथियार रहित विश्व बनाए रखना। इसे 2021 में लागू किया गया। वर्तमान में कुल 65 देशों ने संधि में शामिल होने की मंजूरी दी है या संधि को स्वीकार किया है, यद्यपि किसी भी परमाणु सशस्त्र देशों ने ऐसा नहीं किया है। संत पापा फ्रांसिस ने लघु एवं मध्य आकार के उद्योगों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया है, जो महामारी एवं युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। लघु और मध्य आकार के उद्योग महामारी एवं युद्ध के कारण आर्थिक एवं सामाजिक संकट की मार झेल रहे हैं। संत पापा ने 2 अगस्त के ट्वीट संदेश में लिखा, आइए हम एक साथ लघु एवं मध्य आकार के उद्योगों के लिए प्रार्थना करें जो आर्थिक एवं सामाजिक संकट से बुरी तरह प्रभावित हैं, ताकि वे अपने समुदायों का संचालन और सेवा जारी रखने के लिए आवश्यक साधन ढूंढ सकें। मेजोगोरे में अंतर्राष्ट्रीय युवा उत्सव मनाने वाले युवाओं को संदेश भेजते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि वे खुले हृदय से यीशु के पास जाने से ना डरें, क्योंकि वे ही हैं जो सच्ची ताजगी एवं सच्ची शांति प्रदान कर सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने मेजोगोरे में अंतर्राष्ट्रीय युवा उत्सव के अवसर पर युवाओं को यीशु के शब्दों की याद दिलाई जो कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेजोगोरे में अंतर्राष्ट्रीय युवा उत्सव 1 से 6 अगस्त को मनाया जा रहा है। वेटिकन ने कजाकिस्तान में 13 से 15 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस की यात्रा का कार्यक्रम प्रकाशित किया। कजाकिस्तान में संत पापा की यात्रा का केंद्र बिंदु होगा विश्व एवं पारंपरिक धर्मों के नेताओं के 7वें सम्मेलन में उपस्थिति, जहां वे एक ख्रिस्तयाग भी अर्पित करेंगे। विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं के 7वें सम्मेलन में भाग लेने हेतु संत पापा फ्रांसिस सितंबर में रूस के दक्षिण स्थित मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान की यात्रा करेंगे। सम्मेलन की विषय वस्तु है महामारी के बाद मानवता के सामाजिक आध्यात्मिक विकास में विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की भूमिका। विश्व भर के धर्मगुरु हर 3 साल में नूर सुल्तान में विश्व के नेताओं एवं पारंपरिक धर्मों के एक सम्मेलन में भाग लेते हैं। इससे पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 2001 में कजाकिस्तान जाकर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसका आदर्श वाक्य था एक दूसरे को प्यार करो। संत पापा फ्रांसिस कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में अपने 3 दिन काफी व्यस्तता में गुजारेंगे। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार देश में करीब 70% मुस्लिम और 25% ख्रिस्तीय हैं, जिनमें कैथोलिकों की संख्या 1% के करीब है। वेटिकन ने मंगलवार को संत पापा फ्रांसिस की कजाकिस्तान यात्रा का कार्यक्रम जारी किया जो इस प्रकार है। संत पापा 13 सितंबर को प्रातः 7:15 बजे रोम के फ्यूमिचिनो हवाई अड्डे से प्रस्थान करेंगे और शाम 5:45 बजे नूर सुल्तान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां 6:30 बजे नूर सुल्तान के राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत समारोह होगा। स्वागत के बाद वे राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात करेंगे। 14 सितंबर को 10 बजे शांति और मेल मिलाप भवन में विश्व एवं पारंपरिक धर्मों के नेताओं के 7वें सम्मेलन का उद्घाटन होगा, जहां संत पापा फ्रांसिस भी उपस्थित होंगे, जहां वे विभिन्न धार्मिक नेताओं के साथ व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे और 4:45 बजे एक्सपो ग्राउंड में ख्रिस्तयाग अर्पित करेंगे। तीसरे दिन 15 सितंबर को 9 बजे वे प्रेरितिक राजदूत आवास में जेसुइट सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। तत्पश्चात माता मरियम सदा सहायिका को समर्पित महागिरजा घर में धर्मदक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों, धर्म सामाजों, सेमिनरी के छात्रों और प्रचारकों से मुलाकात करेंगे और अंत में 8:15 बजे वे रोम के फ्यूमिचिनो हवाई अड्डे पर वापस लौटेंगे। संत पापा फ्रांसिस 28 अगस्त को जब क्षमाशीलता का वार्षिक समारोह मनाने इताली शहर अक्विला की प्रेरितिक यात्रा करेंगे, तब उनके साथ धन्य कुंवारी मरियम की 3 तस्वीरें भी होंगी। मध्य इटली के अब्रूत्सो प्रांत में 28 अगस्त को संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा में कुंवारी मरियम की 3 तस्वीरें अक्विला की संक्षिप्त यात्रा की रूपरेखा तैयार करेंगी। संत पापा की यात्रा हेतु रोयो की माता मरियम या क्रूस की माता मरियम की पौत्र तस्वीर को वेदी पर रखा जाएगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।